हमारे समय की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है कचरा। आप हम मिलकर रोजाना टनों टन कचरा पैदा कर रहे हैं और इसका कोई निदान नहीं है। रिसाइकलिंग महंगा और विशाल प्रोजेक्ट है, इसलिए लोग उससे बचते हैं। लेकिन प्रोफेसर वीना सहजवाला ऐसा नहीं सोचती। न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी में काम करने वाली प्रोफेसर सहजवाला कहती हैं कि कचरा तो संसाधन है और उसे इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने एक नई तकनीक ईजाद की है जिससे बहुत छोटे स्तर पर और बहुत कम खर्च में रिसाइकलिंग संभव है। आइए उन्हीं से समझते हैं उनकी इस नई खोज के बारे में। प्रोफेसर सहजवाला, सबसे पहले तो आपका स्वागत है SBS हिंदी पर।
थैंक यू विवेक।
आजकल चर्चा है आपकी एक नई खोज की, इसका नाम है मटेरियल माइक्रो सर्जरी।
हाँ।
ये मटेरियल माइक्रो सर्जरी टेक्निक क्या है?
हाँ विवेक, यू नो हम लोग सब अपना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो यूज करते हैं, फोन्स, लैपटॉप्स, तो इसमें कितने छोटे छोटे मटेरियल्स होते हैं, सो मेनी मेटल्स हैं और उसमें प्लास्टिक भी है। तो अभी ऐसे सोचो कि अभी इन मटेरियल्स को, ये फोन्स, ये लैपटॉप्स को अगर रिसाइकलिंग करना पड़े तो ऐसे नहीं कि जैसे नॉर्मल प्लास्टिक बॉटल की तरह रिसाइकल हो सकता है, क्योंकि एक नॉर्मल प्लास्टिक बॉटल में तो पूरा का पूरा एक टाइप ऑफ प्लास्टिक है, तो उसको सीधा जाके रिसाइकल कर सकते हैं एक रेगुलर रिसाइकलिंग मशीन में। किंतु जब हम अपने ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को देखते हैं, इसमें ये छोटे छोटे जो मटेरियल्स हैं, ये स्टैंडर्ड मशीन्स के साथ तो रिसाइकल करना मुश्किल होता है, क्योंकि ये सब मेटल्स और प्लास्टिक्स जो मैं बता रही थी, ये एकदम पास पास में जैसे चिपके हुए हैं सर्किट बोर्ड के ऊपर जैसे। तो विवेक, ये जो हम लोग का नया इन्वेंशन है, ये डेवलप किया गया है हम लोग का साइंस जो UNSW स्मार्ट सेंटर पे हम लोग काफी सालों से डेवलप कर रहे हैं। ये नया साइंस हम लोग बुलाते हैं इसको माइक्रो रिसाइकलिंग साइंस। तो जैसे नेम बता रहा है, ये अलग प्रकार का रिसाइकलिंग है। माइक्रो रिसाइकलिंग साइंस ऐसा है कि हम लोग माइक्रो लेवल पे ये देख सकते हैं कि हम लोग क्या मटेरियल्स बना सकते हैं। तो ऐसे नहीं कि एक एक टाइप ऑफ मेटल हुआ वो एग्जैक्टली सेम टाइप ऑफ मेटल को रिसाइकलिंग करना चाहिए। इनफैक्ट माइक्रो रिसाइकलिंग साइंस में ये हम लोग दिखा रहे हैं कि अलग अलग प्रकार के जो मेटल्स होती हैं, अगर ये मेटल्स को साथ साथ में पर कंट्रोल कंडीशंस में रिसाइकल किया, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल एलॉयज हम लोग बना सकते हैं। तो ये हम लोग जो डेवलप किया है नया साइंस, उस साइंस के ऊपर हम लोग ये दिखाया है कि छोटी छोटी मेटल्स को अगर सेपरेट करना पड़े, जैसे हम लोग रिसाइकलिंग के बारे में सोचते हैं, वो जैसे मैंने पहले समझाया, अगर पॉसिबल नहीं हो सकता है, उसका मतलब ये नहीं कि रिसाइकलिंग इम्पॉसिबल है। उसका ये मतलब है कि हम लोग को डिफरेंट टाइप ऑफ साइंस डेवलप करना पड़ता है। एंड इन ये माइक्रो रिसाइकलिंग साइंस जो हम लोग ने डेवलप किया है, ये साइंस एब्सोल्युटली हम लोग को ऐसे डिफिकल्ट मटेरियल जैसे हम लोग के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए बनाया हुआ है। तो हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल एलॉयज बना सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि छोटे स्केल पे माइक्रो रिसाइकलिंग साइंस एक अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी कर सकते हैं। तो ताकि इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट कि हम लोग को एक बड़ी मशीन चाहिए ये बनाने के लिए, हम लोग का जो सोल्यूशन है वो जैसे डिसेंट्रलाइज्ड सोल्यूशन है। तो जो UNSW पे हम लोग ने बनाया है हम लोग का माइक्रो फैक्ट्री, ये माइक्रो फैक्ट्री दिखाता है कि अलग अलग आउटपुट्स, अलग अलग चीज हम लोग बना सकते हैं। तो इसमें फायदा ये हुआ कि जहां पर भी हम लोग ये माइक्रो फैक्ट्री इंस्टॉल करें, जो जो मटेरियल्स आती हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स आती है, जैसे अपना फोन्स के बारे में बात किया हो, या किंतु इन द फ्यूचर बैटरीज हम लोग देखने वाले हैं, ये बहुत अलग प्रोडक्ट्स हैं। इसके लिए एक सोल्यूशन तो कभी चलेगा नहीं, इसीलिए हम लोग का माइक्रो रिसाइकलिंग साइंस माइक्रो लेवल पे देखता है, ताकि इनफ वैरायटी ऑफ इनपुट मटेरियल्स हम लोग को माइक्रो रिसाइकलिंग में सोल्यूशन में डाल सकते हैं।
तो आप ये कह रहे हैं कि जैसे एक फोन को रिसाइकल जब करना है, उसमें जितने मेटल्स हैं उनको अलग अलग किया जा सकता है?
हाँ, अलग अलग जैसे फिजिकली नहीं, पर हम लोग का जो साइंस है, पहले पहले तो अलग करना है कि जैसे प्लास्टिक को अलग किया या ग्लास को अलग किया, पर उसके बाद जो जो बहुत स्टेप्स जो हम लोग अपने माइक्रो फैक्ट्री में डेवलप कर रहे हैं वो अलग मशीन्स, अलग मॉड्यूलर मशीन्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स बना सकते हैं, ताकि अल्टीमेटली आउटपुट्स जो हम लोग बनाएं, ये आउटपुट सेरामिक हो या मेटालिक हो या प्लास्टिक का आउटपुट हो, ये हर एक मटेरियल जो हम लोग बनाते हैं इसका एकदम फायदा होना चाहिए. क्योंकि हम लोग ने कितनी बार देखा है कि यू नो स्टोरीज देखे हैं, जैसे अफ्रीका में लोग जैसे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को बर्न करते हैं, जैसे प्लास्टिक बर्न कर जाते हैं उसमें से मेटल निकालने के लिए. तो हम लोग का वो अप्रोच बिल्कुल नहीं है. इनफैक्ट हम लोग कभी भी बर्न नहीं करते हैं, ताकि हम लोग को ये चाहिए कि हर मटेरियल को उसमें प्रिजर्व किया जा सकता है. ताकि हम लोग हर एक मटेरियल का, प्लास्टिक हो, ग्लास हो, मेटल हो, हर एक मटेरियल का फायदा ले सकते हैं.
और इनका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन जो है वो कितना प्रैक्टिकल है फॉर कंट्रीज लाइक इंडिया, जहाँ वेस्ट अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और वहाँ इतना पैसा भी नहीं है कि उसको सेग्रीगेट किया जा सके और रिसाइकल किया जा सके, तो वहाँ इनका एप्लीकेशन कैसा हो सकता है?
नहीं, आपने जो बताया एकदम ठीक बताया. इसीलिए यू नो शुरू से जब मेरे मन में ये था कि हम लोग ये माइक्रो रिसाइकलिंग साइंस और माइक्रो फैक्ट्रीज यू नो डेवलप करेंगे, यही आइडिया था कि अगर कंट्रीज जहाँ पे या इवन ऑस्ट्रेलिया में अगर हम लोग को यू नो रीजनल टाउन्स में एक सेटअप डालना हो, तो हम लोग को ये जरूरत ही नहीं है कि बड़े बड़े मशीन्स को लाके लगा दो, किंतु छोटे छोटे मशीन्स को करके उसमें एक तो अफोर्डेबिलिटी हो गई, तो ये बड़ा क्वेश्चन हुआ कि लोगों को इतना पैसा है ही नहीं कि बड़े बड़े यू नो स्मेल्टर्स और ये सब लगा सकते हैं. तो ये इंडिया हो या ऑस्ट्रेलिया हो, वो सेम सवाल आप पूछ सकते हैं. पर किंतु ऑल्सो ये दूसरी बात है कि छोटे छोटे शहरों में, छोटे जगहों में यू नो कभी कभी ये होना चाहिए कि हम लोग का वॉल्यूम्स भी ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता. अभी जैसे सिडनी को कंपेयर करो एक छोटे रीजनल टाउन से, या इंडिया में बॉम्बे को कंपेयर करो एक छोटे यू नो टाउन से, यहाँ पे वॉल्यूम्स अलग होंगे. तो ये भी तो सोचना चाहिए कि हम लोग को कितना बड़ा या कितना छोटा मशीन चाहिए, उस हिसाब से ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है ये माइक्रो फैक्ट्रीज में, इसमें ये है फोकस्ड और टारगेटेड और वेरी सिलेक्टिवली हम लोग ये अप्रोच कर सके. बिकॉज इनफैक्ट आप सोचो अगर इंडिया में लगाना हो ऐसी टाइप ऑफ माइक्रो फैक्ट्रीज, उसको पार्टनरशिप और कोलैबोरेटिव मॉडल में कर सकते हैं कि अलग अलग माइक्रो फैक्ट्रीज के अलग अलग ऑपरेटर्स सब अपने आप जैसे एन इंडस्ट्रियल यू नो इको पार्क जैसे एरिया में सेटअप हो, ताकि उस हिसाब से सबका फायदा हुआ. तो अगर कोई अपने आप को एक मेटल एलॉय बनाने की कोशिश कर रहा है, जैसे इसमें कॉपर है तो कॉपर बना सकता है, कोई और को इंटरेस्ट है ज्यादा ग्लास में या प्लास्टिक्स में, ये अलग अलग प्रकार के माइक्रो फैक्ट्री साथ साथ में एक दूसरे का फायदा कर सकते हैं. क्योंकि अगर ये सब एरियाज देखो यू नो मैं जब विजिट कर रही थी दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में सीलमपुर, अभी वहां पे और मेनी मेनी प्लेसेस जैसे बॉम्बे में धरावी है, यहाँ पे प्रोडक्ट्स तो आती हैं, प्रोडक्ट्स डिसमेंटल होती हैं, पर एक बार ये प्रोडक्ट्स डिसमेंटल हो गई, उससे हम लोग को ये देखना चाहिए कि कैसे ये प्रोडक्ट्स को डिसमेंटलिंग के बाद ज्यादा फायदा बना सकते हैं, ताकि रिसाइकलिंग करके मेटल्स बना सके या जो भी एक्सपेंसिव मटेरियल्स है वो बना सके. तो ये उस हिसाब से ये माइक्रो फैक्ट्री मॉडल शुरू से जब मैंने सोचा है, ये इंस्पिरेशन तो ऑफ कोर्स आया ही है इंडिया से, कि हम लोग कैसे सबके लिए यू नो जॉब्स क्रिएट कर सके या सबके लिए फायदा बना सके, ताकि यू नो ये ना हो कि कोई एक बड़ा कंपनी इससे पैसा बनाए. ये होना चाहिए कि छोटे छोटे कंपनीज भी, अगर सोशल एंटरप्राइज भी हो या छोटा बिजनेस हो, सबको पार्टिसिपेट करके सबको इससे फायदा बनाना चाहिए. तो ये मॉडल इस प्रकार से काफी यूनिक है, क्योंकि जैसे आपने पहले पूछा अफोर्डेबिलिटी इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट. तो अगर एक छोटा सोशल एंटरप्राइज हो या छोटा कंपनी हो, यू नो ये छोटे छोटे ऑपरेटर्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसका फायदा उठा सकते हैं.
प्रोफेसर, जो आप कह रहे हैं उससे मुझे ये लग रहा है, क्योंकि वेस्ट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम ऑफ आर टाइम्स, तो उस प्रॉब्लम से का सॉल्यूशन हो सकता है इस तरह की टेक्निक्स में?
हाँ, आपने एकदम ठीक बताया. अभी वेस्ट तो अब जहां पर भी देखो वर्ल्ड में, ऑस्ट्रेलिया या इंडिया, यही तो सवाल सब लोग पूछ रहे हैं कि कैसे हम लोग डील करेंगे ताकि हम लोग एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें, प्रिजर्व करें, उसे एक्स्ट्रा जॉब्स बना सकते हैं. अल्टीमेटली ये फायदा तो होना ही चाहिए कि हम लोग इसे यूजफुल मटेरियल्स बनाएं. ऐसे ना देखें कि जैसे वेस्ट बुरी चीज है, ऐसे देखना नहीं चाहिए, क्योंकि वेस्ट भी ये आइटम्स हुए हैं जो हम लोग ने यूज किया है. जैसे हम लोग फोन के बारे में बात कर रहे थे, हम लोग यूज किया है, हम लोग ने अपना सिंपल वाटर बॉटल यूज किया है, कपड़े, जो भी चीजों को देखो, हर एक चीज दुनिया में नेसेसिटी था तो पहले उससे मैन्युफैक्चरिंग किया है. फिर उसके बाद जब यूजफुल नहीं है प्रोडक्ट, उसका मतलब ये नहीं कि ये वेस्ट एकदम प्रॉब्लम की तरह देखना चाहिए, किंतु हम लोग को ये देखना चाहिए कि इससे इससे रीमैन्युफैक्चरिंग कैसे कर सकते हैं. तो अगर हम लोग उस लेंस से देखें कि देखो ये वेस्ट नहीं है, ये एक्चुअली रॉ मटेरियल है जिससे हम लोग फिर इसको नई लाइफ दे सकते हैं. एंड मुझे ये थिंकिंग अराउंड कि हम लोग रीमैन्युफैक्चरिंग करें, मटेरियल से दूसरा प्रोडक्ट बना सकें, उसका मतलब ये हुआ कि वेस्ट कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा. अभी इंडिया में तो ये कल्चर एब्सोल्युटली है कि देखो हम लोग मटेरियल्स प्रोडक्ट्स कभी फेंके नहीं, पर किंतु फैमिलीज में खिलौने हो या कपड़े हो, भाई बहन तो सब शेयर करते ही हैं. तो अभी ये सोचो कि ये फिलॉसफी जो हम लोग का शेयरिंग फिलॉसफी है फैमिलीज में, अभी उसको हम लोग शेयरिंग फिलॉसफी सोच के, रिपेयर फिलॉसफी सोच के, रीमैन्युफैक्चरिंग फिलॉसफी जो जो एकदम आजकल दुनिया में यही लोग पूछ रहे हैं कि कैसे हम लोग करें, तो अगर ये ओवरऑल फिलॉसफी सोचे तो एब्सोल्युटली इट इज पॉसिबल कि हम लोग नए नए बिजनेसेस खोल सकेंगे जिसमें लोगों का बिजनेस हो चीज रिपेयर करना. अभी हम लोग कपड़े के बारे में सोचते हैं, कपड़े, जूते, ये सब चीज इंडिया में रिपेयर करना तो नॉर्मल है. अभी ये सोचो कि ज्यादा ही ज्यादा अगर सामान जैसे लोग बुलाकर लोगों को रिपेयर करवाते हैं, पर जो आइटम्स अगर रिपेयर नहीं कर सकते हैं या इतना पुराना हो गया है या डैमेज हो गया है, उसको हम लोग क्यों वेस्ट सोचना चाहिए? क्योंकि उसमें अंदर जो मटेरियल है, जिससे भी वो मटेरियल बना हो, मेटल से या प्लास्टिक से या ग्लास से, ये मटेरियल तो यूज कर सकते हैं. वो प्रोडक्ट नहीं चले सोचो, पर किंतु मटेरियल तो यूज कर सकते हैं नया प्रोडक्ट बनाने के लिए. तो वो फिलॉसफी की रीमैन्युफैक्चरिंग फिलॉसफी अगर हम लोग देखें कि प्रोडक्ट्स का फॉर्म चेंज हो जाए, पर किंतु उसमें जो बेसिक मटेरियल्स हैं वो मटेरियल्स को हम लोग रीफॉर्म करके उसको ब्रिंग इट बैक टू लाइफ अगेन. एंड एंड ये अगेन फिलॉसफी मुझे पर्सनली अच्छी लगती है, क्योंकि हम लोग देन ये सोच सकते हैं कि हर एक मटेरियल में फायदा है, हर एक मटेरियल में हम लोग यूज कर सकते हैं. एंड एंड मुझे ये इनफैक्ट जो मैंने अपने बचपन से सीखा है, जब मैं बॉम्बे में, ऑफ कोर्स वो जहाँ मेरे मेरी माँ रहती है, वहां पे हम लोग शुरू से सीखे थे कि कोई सामान को वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये हम लोग सब जानते हैं. पर किंतु आजकल प्रोडक्ट्स जो इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं, ये ट्रेडिशनल रिसाइकलिंग उससे हमेशा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता है. कभी कभी रिपेयर कर सकते हैं, कभी कभी आइटम्स रिपेयर नहीं हो पाती हैं. अभी देखो सिंपल आइटम, अभी हम लोग का प्रिंटर्स, जैसे देखो अभी ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, प्रिंटर्स है, सबको आजकल ऑफिसेस में, घर में प्रिंटर्स है. अभी प्रिंटर्स और ये सामान काफी ऑब्सोलीट हो जाते हैं. उसका ये मतलब नहीं कि वो जो प्लास्टिक जिससे वो प्रिंटर बना हुआ है वो प्लास्टिक को बर्न करना चाहिए, एब्सोल्युटली नॉट. वो प्लास्टिक को अगर सोचो कि रीफॉर्म करके हम लोग का जो माइक्रो फैक्ट्री टेक्नोलॉजी है उससे हम लोग नए आइटम्स बना सकते हैं, तो जो हम लोग ने दिखाया है कि इवन ये कॉम्प्लिकेटेड प्लास्टिक जिससे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जैसे हम लोग का प्रिंटर्स बनाते हैं, ये प्रिंटर्स को जो रीफॉर्म करके नई लाइफ उसमें दे सकते हैं, वो कितना अच्छा होगा. क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि ये छोटा कंपनी भी आके कलेक्ट करेगा, माइक्रो फैक्ट्री सेटअप करके इसमें नया प्रोडक्ट बनाएगा, और वो नए प्रोडक्ट्स हम लोग ने ऑलरेडी दिखाया है कि उससे हम लोग नया प्रोडक्ट 3D प्रिंटर्स यूज करके कर सकते हैं। पर किंतु माइक्रो फैक्ट्री जो इसेंशियल आइटम है उससे हम लोग जैसे प्लास्टिक का एक फिलामेंट बनाते हैं, और वो प्लास्टिक फिलामेंट, उसको सोचो जैसे वो आपका पेपर है, ये प्लास्टिक फिलामेंट 3D प्रिंटर में फीड करके नए नए प्रोडक्ट्स प्रिंट कर सकता है। तो अभी ये सोचो कि हर एक चीज को अगर हम लोग रिफॉर्म कर सकें तो टेक्निकली कोई भी चीज को वेस्ट नहीं कंसिडर करना चाहिए। इनफैक्ट ये सोचो जो हम लोग के कल्चर में ये जो सोचते हैं जैसे रीबर्थ का कल्चर, अभी उसको उस हिसाब से सोचना चाहिए कि क्यों नहीं हम लोग के सब आइटम्स हम लोग रीबर्थ सोचें। कि अभी प्लास्टिक्स को जैसे लोग जलाते हैं वो भी तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि एक बार जला दिया वो प्लास्टिक बस खत्म हो गया, वो प्लास्टिक का वैल्यू रहा नहीं। पर किंतु एक्सपेंसिव प्लास्टिक्स को अगर हम लोग रीबर्थ कर सके नए नए प्रोडक्ट में, उसमें सोचो कितना फायदा हो सकता है इकोनॉमी के लिए। तो ये फिलॉसफी है कि माइक्रो फैक्ट्रीज का जो बेनिफिट है, एनवायरमेंटल बेनिफिट एज वेल एज इकोनॉमिक बेनिफिट, सबके लिए फायदा हो सकता है। और उसमें ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आजकल सबके माइंड में है कि कहाँ पे कैसे हम लोग ये नए जॉब्स क्रिएट करेंगे। ये कोविड के टाइम्स में हम लोग को ये भी सोचना चाहिए कि काफी प्लास्टिक्स हम लोग के सोसाइटी में जनरेट हो रही है बिकॉज ऑफ कोविड। उसका मतलब हम लोग क्या ये सब प्लास्टिक को जस्ट फेंक दें, ये तो करना ही नहीं चाहिए। ये सोचना चाहिए कि अगेन उसका रिसाइकलिंग और रिफॉर्मिंग करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए। तो हम लोग इसमें ऑस्ट्रेलिया में भी काफी लोगों के साथ जो बात करते हैं, फैक्ट्रीज, हॉस्पिटल्स, जो लोग को इंटरेस्ट है ये सब टेक्नोलॉजीज में, एक चीज कॉमन है कि सब लोग यही सवाल पूछते हैं, हम लोग के पास इतना ये एक्स्ट्रा प्लास्टिक है, क्या कर सकते हैं उसको। तो ये सवाल तो दुनिया में कहीं पे भी पूछ सकते हैं, हॉस्पिटल्स और कोविड, ये तो अभी पूरी दुनिया में चल रही है। तो ये सोचो कि माइक्रो फैक्ट्रीज का ये फायदा हुआ कि छोटा कंपनी हो बड़ा कंपनी हो, ये सब इट इज विद इन एवरीबडीज रीच। एंड मुझे ये सबसे ज्यादा अच्छा लगता है कि ये अफोर्डेबल है, सस्टेनेबल है, सोशल एंटरप्राइजेस भी सेटअप कर सकते हैं। तो उसका मतलब ये हुआ कि सबका फायदा हो सकता है ये माइक्रो रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी से।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर सहजवाला ये जानकारी देने के लिए एंड शेयरिंग दिस नॉलेज विद अस। थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू, धन्यवाद।